گروپ نمبر چار، صدا مالک پن اور بالک پن کے نشے میں رہنے والی سریشت آتمائیں انبھو کرتے ہو، جب چاہو مالک پن کی ستھی میں ستھت ہو جاؤ اور جب چاہو بالک پن کی ستھی میں ستھت ہو جاؤ، ایسا انبھو ہے یا جس سمیں بالک بننا ہو اس سمیں مالک بن جائیں اور جس سمیں مالک بننا ہو اس سمیں بالک بن جاتے ہو، جب چاہو جیسے چاہو ویسے ستھی میں ستھت ہو جاؤ، ایسا ہے جب چاہو جیسے چاہو ویسے ستھی میں ستھت ہو جاؤ، ایسا ہے کیونکہ یہ ڈبل نشہ سدا ہی نروگن بنانے والا ہے، جب بھی کوئی وگن آتا ہے تو اس سمے جس ستھی میں ستھت ہونا چاہیے اس ستھی میں نہ ہو کر نہ ہونے کارن وگن آتا ہے۔ تو بابا کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو مالک پن کا نشہ ہم پرمات اور ایک بالک پن کا نشہ، بالک پن ارتھات ہم پرماتم بالک ہے، ایشوری اولاد ہے، ایشوری سنتان ہے، اور مالک کس کے مالک،
مالک
ابھی کس کے مالک،
سوئم
کے مالک، کرمیندریوں کے مالک، اندریا جئی سرو خزانوں کے مالک، سرو شکتیوں کے مالک۔ تو مالک پن اور ایک طرف بالک پن، اپنی رائے دیتے سمے مالک اور جب نرنے ہو جائے متوں کو سویکار کرنے سمے بالک۔ تو ان دونوں ستھی میں ستھت رہنے کا ابھیاس ہو، جب چاہو تب جیسی ستھی چاہے ویسی بنا سکتے ہو۔ بابا نے کہا یہ ڈبل نشہ رہے تو ہی نروگن رہیں گے، جب بھی کوئی وگن آتا ہے تو اس سمے جس ستھی میں ستھت ہونا چاہیے اس میں ستھت نہ ہونے کارن وگن آتے ہیں۔ وگن وناشک آتمائیں ہو یا وگن کے وش میں ہونے والی ہو، کون سی آتمائیں ہو، سدیو یہ سمرتی میں رکھو کہ ہمارا ٹائٹل ہے ہی وگن وناشک۔ وگن وناشک آتما سوئم کیسے وگن میں آئے گی، چاہے کوئی کتنا بھی وگن اوپر بن کر آئے لیکن آپ وگن وناش کریں گے۔ صرف اپنے لیے وگن وناشک نہیں ہو، کس کے لیے ہو، سارے وشو کے وگن وناشک ہو، وشو پریورتک ہو۔ تو وشو پریورتک شکتیشالی ہوتے ہیں نا، وگن کو کمزور بنانے والے ہو، سوئم کمزور بننے والے نہیں، وگن کو بھی کمزور بنانے والے۔ تو یہ کتنا اچھا سمان ہے، میں وگن وناشک آتما ہوں اور وگنوں کو کمزور بنانے والی آتما ہوں، سوئم کمزور بننے والے نہیں۔ اگر سوئم کمزور بنتے ہو تو وگن شکتیشالی بن جاتا ہے، اور سوئم شکتیشالی ہو تو وگن کمزور بن جاتا ہے۔ تو ہر وگن سے شکتیشالی میں ہوں، ہر وگن سے بڑا میں ہوں، ہر سمسیا سے بڑا میں ہوں، یہ سب سمان ہے۔ وگن کو بھی کمزور کرنے والی میں آتما ہوں۔ تو سدا اپنے ماسٹر سرو شکتیوان سوروپ کی سمرتی میں رہو، میں ماسٹر سرو شکتیوان آتما ہوں، میں شکتیشالی آتما ہوں۔ ایک ہی طرح سے اس کو رٹنا بھی نہیں ہے، اس کو الگ الگ شبدوں میں الگ الگ ریتی سے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر کیول اتنا ہی رٹتے رہے کہ میں ماسٹر سرو شکتیوان ہوں، ماسٹر سرو شکتیوان ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو، بور بھی ہو جائیں گے۔ اس کو ایک ہی بات کو الگ الگ ریتی سے، میں ماسٹر سرو شکتیوان آتما ہوں، میں شکتیشالی آتما ہوں، شیو کی جو شکتی ہے وہ میں ہوں، شیو کی سرو شکتیوں سے سمپن میں آتما ہوں، میں سامرتھیشالی آتما ہوں، میں اپار بلشالی آتما ہوں۔ الگ الگ روپوں سے، الگ الگ ریتی سے، الگ الگ شبدوں سے سوئم کو سمجھانا ہے کہ میں شکتیشالی ہوں، میں بلوان ہوں، شکتی کے किससे शक्तिशाली? विघ्नों से शक्तिशाली, समस्याओं से शक्तिशाली, परिस्थिति से शक्तिशाली मैं हूँ, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूँ, विघ्नों को कमजोर करने वाला मैं हूँ। सुना तो बहुत है, कितनी बार सुना, मास्टर सर्वशक्तिमान, असंख्य बार सुना है, बाकी क्या कर रहा है? बनना। सुना तो बहुत बार है, बाबा कहते खाली बनना बाकी है, बाकी सुनने का अर्थ ही है बनना। तो बन गए हो बाप भी, ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं, बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं, जो केवल कहते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बातों के पकोड़े खाने वालों के लिए क्या कहा बाबा ने आज? आज के मूल्य में बाबा ने कहा केवल बातों के पकोड़े नहीं खाओ, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, करके दिखाओ, जो कहते हो वो करके दिखाओ, तो बाप मानेगा। बाप भी ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं। कौन से शक्तिशाली बच्चे? जो कहते हैं और करते हैं। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? परसों की मुरली, बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? जो आज्ञाकारी है, जो सपूत है, जो पवित्र है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो जो सिकीलदे हैं, जो बाबा से बहुत बातें करते हैं, उन्हें बहुत मदद मिलती है। जो बहुत बातें करते हैं उनको दुनिया से नहीं, बाप से। और जो रहम दिल है, सात प्रकार के बच्चे बाबा ने परसों की मुरली में गिनाए थे। जो सपूत है, जो रहम दिल है, जो पवित्र है, जो योगी है, जो ज्ञानी है, जो सिकीलदे है, जो सेवा में तत्पर है, वो बाप को अति प्रिय है। केवल कहने वाले नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो आज्ञाकारी फॉलो फादर करने वाले होंगे, जो आज्ञाकारी है, हुकुमरदार। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज होता है ना, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। होगा नहीं होगा, होगा शब्द नहीं लाओ संडे की मुरली, होगा शब्द नहीं लाओ, क्वेश्चन ही नहीं है होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की जन्म पत्री में विजय जन्म सिद्ध अधिकार है ही। करे नहीं करे, अच्छा होगा नहीं होगा, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, फॉलो करना सहज है ना। हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। सारी श्रीमद बाबा ने दे रखी है। हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो, कैसे करो, यह भी सभी को स्पष्ट है। तो हर कदम में फॉलो करने वाले है, जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं, उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई पड़ी है। विजय का तिलक मस्तक पर चमकता है, विजय की रेखा तकदीर की रेखा सदा है ही। तो यह निश्चय और नशा सदा रहे, कर्म करते भी यह निश्चय रहे, उसमें मर्ज ना हो जाए। निश्चय रहेगा तो नशा रहेगा, और नशा रहेगा तो निश्चय रहेगा। बाबा ने कहा इन दोनों का आपस में संबंध है। तो यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है, होगा या नहीं होगा, नहीं हुई ही पड़ी है। क्योंकि कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई ना, पांडवों ने क्या किया था? विजयी पांडवों का ग्रहण है। पांडवों ने क्या किया था जिसके वजह से उनकी विजय हो गई? साथ में रखा और क्या किया? उसकी हर बात को माना। अगर उसकी हर बात को वो नहीं मानते तो उनकी जीत संभव थी? भीष्म को मारना संभव था क्या? क्या कर दिया फिर कृष्ण ने? बहुत सारी बातें ऐसी की जो अनीतिपूर्ण भी है। परंतु नीति और अनीति का प्रश्न युद्ध के पहले, युद्ध शुरू होने के बाद एक ही लक्ष्य विजय हुई। तो पांडवों ने हर बात किसकी मानी? पांडव पति की और भगवान की मानी, इसके लिए विजय उनकी हुई। तो बाबा कहते हैं पांडवों ने क्या किया, भगवान की मत पर चले अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई ना। द्रोणाचार्य को मारना संभव था क्या? क्या कर दिया फिर?
अश्वत्थामा
झूठी बात बुलवाई ना धर्मराज से भी कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया। धर्मराज जो कभी झूठ नहीं बोलता है उससे भी बुलवाया। उसके बाद ही धृष्टद्युम्न ने निहत्ते द्रोणाचार्य को मार दिया। एक कर्ण को कैसे मारा? क्या नीति पूर्व मारा? जब वो रथ से नीचे था उसका रथ तो जमीन पर धसा हुआ था, जब वो निहत्ता था रथहीन था उस समय मारने को कहा। अर्जुन ने कहा होता मैं नहीं मारूंगा, शस्त्रहीन था अर्जुन ने अगर कहा होता कि मैं नहीं मारूंगा तो पांडवों की विजय हुई होती क्या? नहीं। दुर्योधन को कैसे मारा? भीम ने। क्या नियम के प्रमाण था वो मारना? नाभि के नीचे जंघा पर मारा। जंघा पर मारना युद्ध में नियम नहीं है। और अर्जुन ने, भीम ने कहा होता मैं नहीं मारता हूँ तो भीम को कोई जीत, भीम की विजय हो सकती थी? नहीं। तो चाहे वो दुर्योधन को मारना था, कर्ण को मारना था, भीष्म के लिए क्या कर दिया? नहीं। श्रीखंडी को सामने लाने वाला भी कौन था? पांडव पति। अगर श्रीखंडी सामने नहीं आता तो भीम की मृत्यु हो सकती थी, भीम पराजित हो सकता था, भीष्म पराजित हो सकता था। तो पांडवों ने किसकी सुनी? भगवान की। अर्जुन तो युद्ध हार चुका था पहले ही, युद्ध शुरू होने से पहले ही। काउंसिलिंग किसने की? फर्स्ट साइकोएनालिटिक काउंसिलिंग। सबसे पहले साइकोलॉजी वाली काउंसिलिंग किसने की? पूरी गीता क्या है? काउंसिलिंग ही है ना। अर्जुन को समझा रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, अपने बांधवों को मारने से अच्छा तो मैं भीख मांगकर जीवन व्यापन करूंगा, ऐसी तो विजय भी मुझे नहीं चाहिए। उसको कौन समझाता है? युद्ध करो, ये धर्म युद्ध है, इनमें अपने पितामह को नहीं देखो, अपने गुरु को नहीं देखो, शत्रु को देखो। कौन समझाता है? तो बात बात पर पांडवों ने किसकी सुनी? पांडव पति की सुनी, तब उनकी विजय हुई। और भगवान ने उनकी मदद भी की हर जगह। जब से श्री कृष्ण की एंट्री है महाभारत में, द्रौपदी स्वयंवर से महाभारत में, बाल लीलाएं नहीं, महाभारत में पांडवों के साथ, तब से वो उनका साथी रहा। यहाँ तक कि उसने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। तोड़ी ना? शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी और क्या कर दिया? पहिया ले लिया ना हाथ में और दौड़ा भीष्म की तरफ। चित्र भी है एक। और क्या कहा फिर भीष्म ने उसको? बस गोविंद। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़ता है, ये उसका भक्ति में बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई, तो वो पांडव कौन है? हम। तो पांडवों ने हर कदम पर भगवान की मानी तभी विजय हुई, नहीं तो नहीं होती थी। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। तो वही कल्प पहले वाले हो ना, हम सब कौन है? वही कल्प पहले वाले महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, कौरव सामने हैं, अदृश्य है, पर हम वही पांडव है और हमारी विजय पहले से ही निश्चित है, क्योंकि हमारे शिविर में, हमारे पक्ष में स्वयं भगवान है। वैसे तो हम स्वयं ही शक्तिशाली है शत्रु को जीतने के लिए, परंतु साथ में सर्वशक्तिमान है, तो दो डबल इंजन, डबल पावर एक साथ है क्या? तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है, यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है। कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो, सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालिक है ये डबल नशा, समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी क्या, खिटखिट हो जाए तो क्या, तो भी खुशी कम ना हो, तभी बहुत अच्छा, आने दो और खिटखिट। बीमारी आ जाए तो बाबा ने क्या कहा, बीमारी के लिए वाह व्याधि वाह। अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है और तुम उसकी बहुत तारीफ करो तो वो खुशी खुशी से विदाई लेता है। अगर तुम्हारे पास बीमारी आ जाए, व्याधि आ जाए तो 95 की मुरली। क्या कहा बाबा ने, वाह व्याधि वाह, तो बीमारी खुश होके विदाई लेगी। अगर कोई खिट भी हो जाए तो भी खुशी कम ना हो, खुशी कम ना हो तो इसमें दो दो हाथ उठाओ, सदा खुश रहो। अच्छा तो क्या सुना, मालिक सो बालिक, बालक यह डबल नशा निर्विघ्न बना देता है। तो सोचो कहाँ कहाँ मालिक है और कहाँ कहाँ बालक, छोटे कहाँ बनना है और बड़ा कहाँ बनना है, किस भी बात में हम बड़े। कल भी बाबा ने कहा था तुम इस ड्रामा में सब, तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंचा है, परसों तुम इस ड्रामा के हीरो हीरोइन हो, तुम्हारा पार्ट इस ड्रामा में सबसे ऊंचा है। तो हम मालिक हैं, सर्व खजानों के मालिक, सर्व शक्तियों के मालिक, सर्व गुणों के मालिक, अभी भी मालिक है और वहां पर भी मालिक होंगे। राजाई जब मिलेगी, बाबा ने आज कहा है मैं तुम्हें दहेज देने आया हूँ, कौन सा दहेज देता हूँ, राजाई का दहेज, होलसेल में बाप सब कुछ देते हैं, होल लॉट का। वो तो विनाश के लिए बोला था कल, आज बोला होलसेल में बाप तुमको सब कुछ देते हैं, मैं तुमको दहेज देने आया हूँ। तो बाबा ने जो दहेज दे दिया वो सब हमारी मिल्कियत संपत्ति है, तो हम मालिक हैं। और बालक परमात्मा बालक है, परमात्मा बच्चे, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय औलाद है। तो ये दोनों का नशा, और बाबा ने कहा जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उस स्थिति में स्थित हो जाओ तो निर्विघ्न हो जाओ, कोई विघ्न नहीं आ सकेगा तुम्हारे पास। फिर आगे कहा विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, विघ्न को समाप्त करने वाले, केवल स्वयं के विघ्न विनाशक नहीं, विश्व के विघ्न विनाशक, दूसरों के विघ्न विनाशक, यज्ञ के विघ्न विनाशक, यज्ञ रक्षक आत्माएं हैं हम। तो और आगे और एक चीज जोड़ा, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो कैसे होंगे वो, शक्तिशाली, विघ्नों को भी कमजोर बनाने वाले, विघ्न हमको कमजोर ना बनाए, हम विघ्नों को कमजोर बनाने वाले। भूत हमको ना डराए, हम भूतों को डराए, भूतनाथ की संतान, मास्टर भूतनाथ है हम, भूत भी हमको देख कर भागे, ये कौन आ गए भूतनाथ,
तो
पहली बार देखा इनको तो। अगर स्वयं कमजोर बनते हो तो विघ्न शक्तिशाली बन जाते हैं, और स्वयं शक्तिशाली हो तो विघ्न कमजोर बन जाते हैं। तो सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो। तो अभी बाबा ने कहा सुना तो बहुत है, अभी बनना है। बाप ऐसे शक्तिशाली बच्चों को देख हर्षित होते हैं, कमजोर बच्चों को देख हर्षित नहीं होते। शक्तिशाली बाप समान, विश्व विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक, नशे में रहने वाले बच्चों को देख बाप खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। लौकिक में भी बाप कौन से बच्चे को प्यार करते हैं, जो आज्ञाकारी है, जो फॉलो फादर करने वाले। फॉलो फादर करना अर्थात एक तो जैसा वो है वैसे बनना, दो चीजें उसमें, एक तो निराकारी है वो शिव तो उसको फॉलो करना और उसके जैसा बनना, दूसरा जो है वो एक तो बनने में स्वरूप में और दूसरा आचरण में फॉलो करना, जैसे ब्रह्मा ने आचरण किया वैसे करना, तो उसमें दोनों चीजें हैं। आज की मुरली में प्रश्न है किसको फॉलो करें, बाप को या भाई को, ब्रह्मा को या शिव को, बाबा ने क्या उत्तर दिया, अगर इसको फॉलो करने से भूल भी हो जाए तो अभूल हो जाओगे, क्योंकि उसमें अभूल बनाने की उतनी ताकत है, कोई भी डायरेक्शन देता हो यही समझो कि बाप डायरेक्शन दे रहा है, तो इसमें मुझने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कौन हो? फॉलो फादर करने वाले हो। फॉलो करना सहज है ना, वहां पर कॉपी करते हैं तो मार्क्स कट हो जाते हैं, यहाँ कॉपी करते हो तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, मार्क्स ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वहां पे चीटिंग करने से क्या होता है डॉक्टर मुरली? और यहाँ चीटिंग करने से आगे बढ़ते हो। तो फॉलो फादर, बाप ने कहा और बच्चों ने किया, सोचा और किया, लक्ष्य लक्षण समान, प्लान प्लानिंग समान। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ज्यादा मत सोचो, असोच बन जाओ जब तुम बाप की याद में हो तो। क्या महावाक्य है बाबा के? जब तुम बाप की याद में मगन हो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम बाप की याद में हो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। इसलिए असोच बन जाओ, असोच भव, सोचो नहीं ज्यादा, करे ना करे, अच्छा होगा नहीं होगा यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। फॉलो करना सहज है, हर कर्म में क्या क्या फॉलो करो और कैसे करो यह भी बाप ने स्पष्ट कर दिया है। तो जो हर कदम में फॉलो करने वाले उनको क्या नशा रहता है? यह निश्चय का नशा रहता है कि हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है, होगा नहीं होगा नहीं, हुई ही पड़ी है, क्योंकि कल्प पहले भी पांडवों की विजय हुई है। पांडवों ने क्या किया? भगवान की मत पर चले अर्थात फॉलो किया तो विजय हुई। तो वही कल्प पहले वाले होना, तो यह निश्चय स्वतः ही नशा दिलाता है, कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। तो सदा ही सहज और श्रेष्ठ प्राप्ति का अनुभव करते चलो। मालिक सो बालक है, यह श्रेष्ठ, यह डबल नशा समय प्रमाण प्रैक्टिकल में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। कभी कोई खिटखिट भी हो जाए तो भी खुशी कम ना हो, सदा खुश रहो। अच्छा, ओम शांति।